हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा युग के विलास से लगभग भाग ही चुकी थी। वो बस एक स्टैंप दूर थी जब उसे मेन गेट से बाहर निकलना था। कृषा ने अपने लिए माइक से मदद भी मांग ली थी, तो वहीं युग ने कृषा को रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। वो सारा को गेट के पास लेकर आया और उसे शूट कर दिया। युग ने अपनी पहली गोली सारा के कंधे पर चलाई थी। गोली सिर्फ सारा को छूकर ही निकली थी। दूसरी गोली वो सारा के माथे के बीचों बीच मारने वाला था। युग का निशाना चूक गया था क्योंकि कृषा बीच में आई और उसने युग को दूर धकेल दिया। कृषा और युग जमीन पर गिरे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गोली चलने की आवाज़ सुनकर शब दौड़कर आया। उसने देखा सारा के कंधे पर गोली लगी हुई थी और वो जमीन पर अपने घाव को पकड़कर बैठी थी। शब ने सारा को अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा ओके, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो तुम्हारी गोली निकाल देंगे और तुम ठीक हो जाओगी। सारा को तसल्ली देने के बाद शब जल्दी से हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर को बुलाने लगा। डॉक्टर ने सारा का जख्म देख लिया था, फिर भी उसने ना में सिर हिलाकर कहा, सॉरी मिस्टर राणा, जब तक बिग बॉस नहीं कह देते मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इनका इलाज करने के लिए आपको सर से परमिशन लेनी होगी। गुस्से में शब ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो गए हो, यहाँ ये दर्द में तड़प रही है और तुम्हें परमिशन की ज़रूरत है। अगर युग तुम्हें कुछ कहे तो तुम मुझे आगे कर देना, लेकिन इसका इलाज तो करो। शब्द के चिल्लाने पर डॉक्टर सारा का इलाज करने पर मजबूर हो गया। वहीं बाहर कृषा अभी भी युग के ऊपर गिरी हुई थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कृषा युग के ऊपर से उठने को हुई तभी युग ने उसे कमर से पकड़ा और नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। युग अब कृषा के ऊपर था और उसने कृषा की आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, क्या लगा था कृष, इतनी आसानी से मेरी टेरिटरी में आकर तुम यहाँ से निकल पाओगी? अभी तो तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा भी मिलनी है, तड़पना है जितना मैं तड़पा था, मेरे दर्द का एहसास करना है। युग प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं गई तो दादू सब बर्बाद कर देंगे, कृषा ने काफ़ी रिक्वेस्टिंग वे में कहा। युग पर अब किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने नामे सिर हिलाकर कहा, और अगर तुमने फिर से मुझे छोड़कर जाने की बात की तो मैं सच में सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा और तुम्हारे दादू का ही होगा। कृषा ने कोई जवाब नहीं दिया। युग उसके ऊपर से खड़ा हुआ। कृषा उठकर वहां से जाने लगी तभी युग ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। युग कृषा को अंदर लेकर जा रहा था जबकि कृषा उसे छोड़ने के लिए हाथ पैर मार रही थी। ये सब करके कोई फायदा नहीं है कृष, पहले भी मैं तुम्हें होस्टेज बनाकर ही लेकर आया था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया था। तुम्हारे इतने झूठ और बाकी गलतियां, हमारी दुश्मनी को नज़रअंदाज करके मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था, पर तुम उसके लायक ही नहीं हो, सो जिसके लायक हो वो तुम्हें मिल जाएगा, युग गुस्से में बोला। उसके तेवर देखकर कृषा समझ गई थी कि युग बहुत ज्यादा गुस्से में है और इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगा। मेरी मजबूरियां थी युग, लेकिन तुम भी तो नहीं आए, कृषा ने खुद को सख्त करके कहा। कृषा की बात सुनकर युग के कदम वहीं रुक गए। वो उसकी आंखों में देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मैं नहीं आ सकता था तो तुम तो आ सकती थी ना, चलो मान लिया तुम नहीं आ सकती थी, लेकिन अब आकर भी मुझसे छुप रही थी, इसका मतलब क्या समझूं मैं कृषा सिन्हानिया, क्या बगावत करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ करनी है मुझे बगावत, क्योंकि मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए जो तुमने प्यार का नाम लेकर मुझसे छीन लिया था युग राणा, कृषा गुस्से में बोली। वो जानती थी कि अगर युग से प्यार से बात की तो वो उसे जाने नहीं देगा, इस वजह से वो उससे रूखे तरीके से बात कर रही थी। इस बार युग ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब युग के कदम उसके फ्लोर पर आकर ही रुके थे। फ्लोर पर आने के बाद युग कृषा को अपने रूम में लेकर गया और उसे बेड पर पटक दिया। कृषा बेड पर गिरी हुई थी और युग उसे गौर से देख रहा था। उसने युग का शर्ट और उसी की हुड्डी पहनी हुई थी। युग इस तरह देखने पर कृषा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इस वजह से उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। युग कृषा के पास आया और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, नज़रें ऊपर कृष, और सिर्फ मुझ पर रहनी चाहिए, कृषा नम आँखों से युग को देखते हुए बोली। जो भी हुआ वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। युग तुम मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मेरे चक्कर में तुमने भाई की भी कैसी हालत कर दी, क्या तुम्हें एक बार भी उन पर दया नहीं आई? कृषा अब गुस्सा छोड़कर युग से अपने बीते सालों के बारे में बात करने लगी। युग ने अभी भी कृषा का चेहरा कसके पकड़ रखा था। उसने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मुझे किसी पर दया नहीं आई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने उस घटिया इंसान से बस इतना ही जानना चाहा कि मेरी वाइफ कहाँ है। उसने जवाब नहीं दिया तो मेरा रिएक्शन आना तो नॉर्मल सी बात है। तुम्हारे दादू को मैंने कॉल किया था, उन्हें बोला था कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा, पर उन्होंने अर्जुन के बजाय तुम्हें चुना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर किसी से सवाल पूछना ही है तो जाकर अपने दादू से पूछो। कृषा को इस बात का पता नहीं था, जब आदित्य और युग की बात हुई थी तब वो बेहोश थी और अब तक आदित्य ने उसे यही कहा था कि युग ने बदला लेने के लिए अर्जुन को किडनैप कर रखा है। युग की बातें सुनकर कृषा के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, योग कृषा का चेहरा पढ़ सकता था। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? उनसे और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। पता है क्रिश, तुम्हारी फैमिली ने हमेशा से हमें धोखा दिया है। कहानी का एक पहलू देखो तो हम विलन नजर आते हैं। पहले तुम्हारे पापा को मेरी बुआ के साथ शादी करने के लिए फोर्स करना, बाद में तुम्हारे मॉम डैड की शादी हो जाने के बाद सारे रिश्ते तोड़ देना, तो बाद में तुम्हें किडनैप करके मेरा तुमसे शादी करना, शादी के बाद अलग हो गए तो अर्जुन को किडनैप करके टॉर्चर करना। अगर तुम इस कहानी को किसी को सुनाओगी तो सब यही बोलेंगे कि हाँ, राणा फैमिली कल्प्रिट है, योग राणा सच में एक डेविल है, लेकिन दूसरा पहलू कोई जानना ही नहीं चाहता। ठीक वैसे ही तुम अपने दादू की आधी अधूरी बातें सुनकर मुझे गलत समझ रही हो। इस बार योग ने गुस्से में कृषा का चेहरा छोड़ दिया था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। कृषा की नजरें झुकी हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी योग को क्या जवाब दे। तभी अचानक योग उसकी तरफ पलटा और कोल्ड वॉइस में बोला, ओके फाइन, तुम्हें तुम्हारे दादू के पास जाना है, मैं भेज दूंगा, और साथ ही उन्हें वो सातों पड़ाव चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। बस तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। योग अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार था और उसे कृषा भी नहीं चाहिए थी। ये देखकर कृषा को हैरानी हुई कि आखिर योग क्या मांगने वाला है। बताओ तुम क्या चाहते हो, कृषा ने योग की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा। वैसे काफी हैरानी की बात है, तुम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, मुझे भी छोड़ रहे हो। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मुझसे भी जरूरी कुछ है। क्या है वो चीज, मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए योग? मेरा बच्चा, बस और कुछ नहीं, योग ने सीधे सीधे जवाब दिया, जिसे सुनकर कृषा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो खोई हुई नजरों से योग की तरफ देख रही थी।
योग कृषा को लेकर अपने कमरे में गया था जहां पहले दोनों के बीच बहस हुई। आखिर में युग ने कृषा के सामने एक ऐसी अर्जी रखी जिसे सुनकर कृषा भी हैरान थी। युग ने कृषा से कुछ ऐसा मांगा था जिसके बदले में वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, यहां तक कि अपनी माफिया किंग की पोजीशन भी। कृषा ने उस चीज के बारे में पूछा तो युग ने अपने बच्चे का नाम लिया था। युग के मुंह से बच्चे का नाम सुनकर कृषा को झटका सा लगा और वो खोई हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। कृषा ने कोई जवाब नहीं दिया तो युग उसके पास आया और एक बार फिर तेज आवाज में बोला, क्रिश, आई एम आस्किंग फॉर समथिंग। पाने को तो मैं उसे अपने तरीके से भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो सब नहीं करना है। आई वॉन्ट माई किड। मुझे तो ये भी नहीं पता वो लड़का है या लड़की। युग की आवाज़ सुनकर कृषा का ध्यान टूटा। युग जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे कृषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृषा उठकर जाने लगी तभी युग ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और खींचकर अपने करीब कर लिया। युग ने कृषा की तरफ देखकर गुस्से में कहा, यू कांट इग्नोर मी क्रिश, मैंने बोल दिया मुझे मेरा बच्चा चाहिए, सीधे सीधे दे दो वरना सच में मेरी तरफ से एक जंग शुरू हो जाएगी। नहीं है, कृषा रोते हुए नामे सिर हिलाकर इतना ही बोली। योग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसने कृषा से पूछा, क्या नहीं है क्रिश, जवाब दो मुझे, क्या नहीं है? बोलते हुए युग जोर से चिल्लाया, जिससे कृषा भी डर गई। कृषा की नजरें झुक गई थीं। उसने सुबकते हुए धीरे से कहा, बच्चा नहीं है युग, मेरा मिसकैरेज। कृषा ने इतना ही कहा था, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युग ने गुस्से में उसे दूर धकेल दिया। युग को कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो बिल्कुल शांत बैठा था। फिर युग अचानक खड़ा हुआ और कृषा के बालों को मुट्ठी में भरकर उन्हें खींचते हुए कहा, इतना भी नहीं कर पाई तुम? तुमने कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे पास नहीं आ पाई, मेरे बच्चे का भी ख्याल नहीं रख पाई, उसे खो दिया? हाउ कुड यू डू दिस क्रिश, जानबूझ कर किया ना तुमने और तुम्हारे दादू ने ये सब, ताकि मुझसे बदला ले सको। बोल देना उन्हें कि तुमने मेरा गुस्सा भड़का दिया है और अब तुम लोगों को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मैंने तुम सबको सड़क पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी योग राणा नहीं। लेकिन योग, मेरी बात तो सुनो, एक्सप्लेन करने का मौका तो दो कि ये सब कैसे हुआ। कृषा ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन योग इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने कृषा को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और कहा, आज के बाद तुम्हारा इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा कृषा राणा। हाँ, कृषा राणा इसी नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में हर पल ये अफसोस होगा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। अब तक इसी उम्मीद में जी रहा था कि जब तुम यहाँ आओगी या कभी मुझे मिलोगी तो अपने बच्चों के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। और ट्रस्ट मी कृषा राणा, डेविल का सपना तोड़ने की सजा क्या होती है तुम्हें अब पता चल जाएगा। तुम्हारा इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत का कोई भी सामान नहीं मिलने वाला। गुस्से में युग ने कृषा को बेड पर फेंक दिया और फिर वहां से बाहर चला गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था जबकि कृषा वहां बैठी हुई अपने घुटनों में सिर रखकर रो रही थी। कृषा रोते हुए चिल्लाकर बोली, तुम क्यों कर रहे हो युग मेरे साथ ये सब? ऐसे ही मेरे लिए उस दर्द को भुलाना मुश्किल था और तुम हो कि मुझे और तकलीफें दे रहे हो। कृषा वहां बैठकर घंटे रोती रही, जबकि युग नीचे आ गया था। युग इस वक्त तेज कदमों से चलते हुए हॉस्पिटल एरिया में जा रहा था, क्योंकि उसे सारा से बात करनी थी। उस तरफ जाते हुए युग ने खुद से कहा, अब तुम ही मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकती हो सारा चौधरी, क्योंकि मेरा इस वक्त उसकी शक्ल तक देखने का मूड नहीं है। उसने कभी मेरे इमोशंस की परवाह नहीं की, हमारे बच्चे तक की फिक्र नहीं की, और उसे गिरा दिया। एक घटिया सी ट्रेनिंग के लिए उसने अबॉर्शन करवाया। आई स्वेयर, आदित्य सिंघानिया, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। कृषा ने तुम्हें जरूर हेल्प के लिए बुलाया होगा, देखते हैं अब किसे हेल्प की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले युग ने अपने सिक्योरिटी एजेंट को कॉल पर लिया और उससे कहा, मेरी टेरिटरी में घुसने वाली हर अननोन कार और आदमी को शूट कर दो, चाहे वो कोई सिविलियन ही क्यों ना हो। युग का सिक्योरिटी मैनेजर केविन ये सुनकर हैरान था। युग ने आज से पहले किसी भी इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए नहीं कहा था। केविन ने तुरंत जवाब में कहा, हम चाहें तो टारगेट को स्पेसिफाई करके शूट कर सकते हैं, इसमें सबको मारने की क्या जरूरत है। ठीक है, फिर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने मासूम लोगों को बचा पाते हो। तुम्हें टारगेट बताता हूँ, तो सुनो, मेरा टारगेट आदित्य सिंघानिया है। युग ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। वहीं आदित्य सिंघानिया का नाम सुनते ही केविन और जेनी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। ये ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? अगर हमने आदित्य सिंघानिया को मारा तो माफिया गैंग वॉर छिड़ जाएगा, जेनी ने केविन की तरफ देखकर कहा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। ज्यादा मत सोचो और आदित्य सिंघानिया को ढूंढो, केविन ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा। केविन और जेनी युग के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, तो वहीं आदित्य सिंघानिया कृषा को बचाने के लिए अमृता के साथ युग की टेरिटरी में पहुंच चुके थे। आदित्य सिंघानिया की एक खासियत थी कि वो कहीं पर भी अपना वेश बदलकर नहीं जाते थे, क्योंकि वो जो करते थे वो खुलेआम करने में यकीन करते थे, और आज उनकी यही होशियारी उनके लिए भारी पड़ने वाली थी।